आइए थोड़ा सा बुक में से भी पढ़ते हैं। फरमाया नकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, तुम्हारा फर्ज है, इस लफ्ज़ को हाईलाइट करें, तुम्हारा फर्ज है, क्या फर्ज है, कि दीन को कायम कर दो। कायम किस चीज़ को करते हैं, जो गिरी होती है। देखिए टेबल नीचे झुका हुआ हो तो कोई आएगा कहेगा इसको जरा सीधा कर दें। आज के दौर में दीन गिरा हुआ है, मुझे आपको हमारा फर्ज पुकार रहा है, आओ इस दीन को खड़ा कर दो। पहले तो जरा आप अपने इस जस्ते खाकी में दम पैदा करें, फिर खुद को मुबारक दें, अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी ऑनर दी है। अल्लाह का दीन गिर गया, तुम आके उठा दो। अगर हम मुसलमान देखे तो आज हमारे हाथों में ये गोल है। मुझे आपको ये ऑनर दी गई, सारी दुनिया इस दीन को लेट डाउन कर रही है, इसको गिराने की कोशिशों में। आओ शाबाश, बिस्मिल्लाह करो, इस दीन की इज्जत करवाओ। और यकीन कीजिए मेरी आपकी जिंदगी का मकसद अल्लाह के दीन की इज्जत करवाना हो। दुआओं में दुआ किया करें कि अल्लाह मेरे जरिए से इस्लाम की इज्जत करा ले, अल्लाह मेरे जरिए से इस्लाम का मोरल बुलंद करा दे, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं इस इस्लाम को खड़ा कर दूं, मैं इसको गिरने ना दूं। सच बताए क्या ठुड्डों और रोड़ों में नहीं आया हुआ, ठोकरों में नहीं आया हुआ इस्लाम? जिसका दिल आता है किक मार के वहां फुटबॉल की तरफ फेंक के एक इल्जाम लगा के चला जाता है, और हम बुद्धू और बेवकूफ बन के उनका मुंह देखते हैं। जुर्रत नहीं हमारे अंदर, हमारी जुबानें कट चुकी, गूंगे हो गए। हम कहते हैं हाँ वाकई ऐसे ही, और हम उन्हीं की बोलतियां बोलते हैं, हाँ वाकई ये तो ट्रू मच है। हाँ देखिए ये कितने लिबरल लोग हैं, कपड़े भी ना पहने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज गैर तो गैर अपने मुसलमान बच्चे इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, वो कहते हैं हमें ऐसा इस्लाम चाहिए कोई नहीं, हमें नहीं चाहिए दीन, ये लड़ाइयाँ कराता है। डोंट टॉक अबाउट रिलीजन, ये लड़ाई कराता है, ये घर तोड़वाता है, दीन आता है घरों में झगड़े शुरू होते हैं, तो होंगे, सारा घर जू गंदा है। तो एक बंदा जो सफाई की कोशिश करेगा ना, वो लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि उनकी आज़ादी में रुकावट है, और ना उसको दूसरे अच्छे लगेंगे क्योंकि वो उसके साफ किए हुए को गंदा कर देते हैं। लड़ाई तो होगी, ये तो फितरी बात है। हाँ या तो सारे ही गंदे खुश या फिर सारे साफ, दो मुख्तलिफ तरह के मिजाज एक जगह तो नहीं जमा होते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दीन को कायम कर दो। अच्छा अब यहां आप जरा चंद सेकंड के लिए इस बात को हजम करें, हो गई है, दिल मानता है ना कैसा होना चाहिए, इसमें कोई शक तो नहीं है। आप क्रिश्चियन, ज्यू, यहूदी, इस्लाम, मुस्लिम, किसी को जाके पूछ ले कैसी दुनिया चाहते हो, टेंशन फ्री, चोरियां ना हो, चिकारी ना हो, सब कहेंगे जी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका जवाब कि फिर हो क्यों नहीं रहा आज तक। वहां 100 कुछ लोग थे अल्लाह के नबी के साथ, तो 13 साल में मदीना से तबूक और फिर उमर फारूक के 10 साल में ईरान, इराक और बसरा और इधर उधर हो गया ना, आज क्यों नहीं हो रहा? उसका जवाब अगले हिस्से में, वला ततफर्रकू, और इसमें किसी किस्म की फिरके बंदी को ना आने दो। सूरह शुरा क्या है तेरा, बड़ा बड़ा करके लिख ले, जब उम्मत मुस्लिमा फिरकों में बटती है तो दीन कायम नहीं होता। कौन सा दीन कायम करेंगे आप, हनफी दीन? वो कहेंगे नहीं। शाफई दीन? वो कहेंगे नहीं। मालिकी दीन? वो कहेंगे सॉरी हम्बली दीन। वो कहेंगे शिया दीन? वो कहेंगे बरेलवी दीन? वो कहेंगे वहाबी दीन? वो कहेंगे देवबंदी दीन? कौन सा दीन? पहले तो डिसाइड कीजिए इनमें से एक कौन सा दीन है। और ना शिया सुन्नी को मानेगा, ना हनफी शाफई को मानेगा, एक लफ्ज है जिसको सब मानेंगे, हुवा समाकुमुल मुस्लिमीन। वहदत उम्मत का राज एक कुरान और एक हदीस, इनको पकड़ लें, इसको तो सभी मानते हैं ना, दावा तो करते हैं ना कि हम सब जो अहकामात जो बातें कहते हैं कुरान सुनने से कहते हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा ना, तो इसको ले ले। सारे तो देखे कदूरी नहीं पढ़ते ना, सारे हिदाया नहीं पढ़ते, वो कौन पढ़ते हैं जो है अपने आप को हनफी कहते हैं। अब बताइए कदूरी और हिदाया जो फिकह हनफी की रिप्रेजेंटेटिव फिकी बुक्स हैं, वो सारे हनफी तो उठा लेंगे, तो शाफी तो नहीं उठाएंगे, वो कहेंगे मैं फिकह शाफी पढ़ाऊँ। वो कहेंगे मालकी पढ़ाओ। तो वाकई बात तो सच है, हर एक को अपनी किताब, अपना नाम, अपना उस्ताद अच्छा लग रहा है। तो तुम क्या करो, इन सब को छोड़कर किताबुल्लाह ही व सुन्नती रसूली पकड़ लो। ये इतनी छोटी बात है, एक बच्चे को भी समझ आती है, लेकिन जब बंदा फिरकों में बटता है, जमातों में बटता है, गिरोहों में बटता है, फिर समझ नहीं आती। और लिख ले अपने पास, आज के दौर का सबसे बड़ा तागूत मुसलमानों में फिरकाबाजी है। ताकत हमारी टूट गई। जितने मुस्लिम थे, अगर हम मुनज्जम होते और मुत्तहिद होते, तो आज 10 स्कूल आपके इस शहर में बच्चों के बने होते, 10 आपके बैंक बने होते, जहां बिला सूद आपको घर लिए दिए जाते, और इस मुल्क में आपकी हर जरूरत पूरी होती, क्योंकि हर बंदा स्पेशलाइज को जमा करता और वो फील्ड में काम कराता। हमारा हाल यह है कि जिसकी लाठी उसकी बहन, जो सब कर रहे हैं वही मैंने भी करना है, जो सबने शुरू किया था मैं भी वही करूंगा, वहीं पहुंच के खड़ा हो जाऊंगा जहां वो भी आज खड़े हैं। कोई प्लान नहीं है हमारे पास, कोई एजेंडा नहीं है, और हम ले के दीन का नाम बैठे हैं। ये तो जब दुर्गत बननी है हमारी, लग हमें पता चलना है, क्यों कयामत के दिन आता है कि यौमुत तगाबुन। सूरत वाकया में आप क्या पढ़ते हैं, हाफिजतुर राफिया, कितने लोग हैं जो आज बड़े बुलंद कुर्सियों पे बैठे हैं, वो नीचे गिरे होंगे, लताड़ेगा ये दिन कयामत के दिन। गबन होंगे लोग, जिनको जन्नत की वादियों में ढूंढ रहे होंगे, वो जहन्नुम में चिल्ला रहे होंगे। वल्ला ही ये होगा, मैं कोई एग्जेजुरेशन नहीं कर रही, मेरी आंखों में वो आयतें मौजूद हैं कि उस वक्त होगा। सुनाओ तुम क्या थे, तुम फितने के बायस थे, तुम उम्मत को लड़ाते थे, तुम उम्मत को तोड़ते थे, जमातों में बांटा हुआ था। एक छोटी सी बुकलेट है, मेरे पास भी कहीं रखी हुई है, इत्तेहाद मिल्लत के नाम पे, आपको नेट से मिल जाएगी, मौलाना शफी रहमान, शफी नाम है उनके, बीच में आता है कुछ, उनकी बुक है वो। उसमें उन्होंने अनवर शाह कश्मीरी का वाक्या दिया हुआ, अगर आप कभी कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगी। मैंने पिछले मेरा ले रब का पैगाम, मेरे नाम वाली जो तफसीर थी, उसमें पढ़ के सुनाया था, पूरा 2-3 सफ़ों का था, कि जो सारी जिंदगी दीन की खिदमत करते रहे, और जब बिस्तरे मर्ग पे थे तो उनके दोस्त उनको मिलने गए और कहा कि सुनाओ भाई क्या लगता है। तो कहते हैं दोस्त जिंदगी जाया कर दी। तो कहते हैं मौलाना साहब आपकी जिंदगी जाया हुई है, आप तो सारी जिंदगी दीन की खिदमत करते रहे, जिंदगियां तो हम दुनियादारों की जाया हो रही हैं। कहा नहीं मेरे दोस्त, मुझे आज बिस्तरे मर्ग पे इस चीज का एहसास हो रहा है कि सारी जिंदगी जिसको मैं दीन का काम कहता रहा, असल में तो मैं फिकह हनफी की बुलंदी का काम करता रहा। हमारी तो हर स्पीच, हर कोशिश, हर प्रोग्राम का मकसद क्या था, कि दुनिया में फिकह हनफी को गलबा मिल जाए दूसरी फिकहों पे। तो सच बताऊं दोस्त, हमने दीन का नहीं, हमने दीने फिकह हनफी का काम किया। और उन्होंने कहा कि वो सवाल जिसका जवाब ना तो कब्र में, ना हशर में, ना कियामत के दिन है, हम सारी जिंदगी उन्हीं मसलों पे उम्मत को लड़ाते रहे, तो आज तो मुझे लग रहा है कि जिंदगी जाया कर दी। सच बोलता है बंदा मौत के वक्त। तो आप अपनी अपने किबले देखें, आप भी आते हैं आंखें खोल के आया करें, पता चले बाद में आप किसी नाम को प्रमोट करके दुनिया से चले गए। तड़प नहीं है ना अगर आपके अंदर इकामत है दीन की, आप ज्यादा दिन चल नहीं सकेंगे, थक जाएंगे थोड़े दिन में, आपकी कोई एक ऐसी मजबूरी जात की आएगी घर की, आप लुढ़क के वहां जाएंगे। जो जाते हैं वो ऐसे ही नहीं जाते, वो मजबूरियों की ओट में जाते हैं। आप एक हल्का सा शक दिल में लाएं जरा इस दावत पे, कल आप आ ही नहीं सकते। ये काम होता ही 100% कन्विक्शन से, 99% आप कन्विंस है एक चीज से, सिर्फ 1% शक ले आए, डाउट ले आए कि क्या जरूरत है, टू मच ही है, मेरी दोस्तें तो कोई नहीं जाती 5 दिन, बस वो 5 दिन फिर आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे, वो 4, 4.5 रह जाएंगे, 5 नहीं बनेंगे। शक पैदा करके देखे कि क्या पढ़ना पढ़ाना किया वह शुरू 5-6 साल से, सच्ची बता रही हूं आपको। ये वही रोज आके बैठते हैं जिनको यकीन है कि ये ऑक्सीजन टैंक है, ये मास्क है मेरा, इसके बगैर मैं नहीं जी सकती, वरना आप नहीं आएंगे, मैं भी नहीं आऊंगी। मौत की तरह आपको यकीन होगा ना कि ये है इकामत-ए-दीन का तरीका। और मैं तो दिन गिन रही हूं, पांचवा साल है मेरा, हाल नॉर्वे में शायद छह होंगे, मुझे दिन याद नहीं रहते। किसी को अगर डेट याद है कौन से साल में हमने ये सिलसिला शुरू किया था तो बता दे। 2010, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 हो गए। अभी भी मुझे उम्मीद है कि 7 साल और तड़पेंगे हम। 13 साल मक्का के पहले नॉर्वे में पूरे होंगे, फिर यहां से मदनी दौर आएगा। इतनी अजनबियत, इतनी बेगानगी है सोसाइटी में, लोग आपको ऐसे देखते जैसे आप एलियन है। आपको नहीं लगता? लोग आपको ये तो नहीं समझते कि आप कुरान से जुड़ गई हैं, लोग कहते हैं आप बहक गई हैं, है कि नहीं? या आप ही किस सुनाई हुई कहानी है, मेरे तक तो अल्लाह के हुक्म से आज तक कोई नहीं आया। बाजी आप यही कहते हैं ना, क्या कहते हैं लोग जब आप उनको दावत देती हैं?
ये कहते हैं कि आपको पता नहीं चल रहा, वो तो आपको पहले इस तरह बातें करेंगे फिर आपको वो गुमराह कर देंगे ना, तो आप ऐसा ना करें, आप सोच के पीछे हो जाए। वो हमें दारा के लोग कहते हैं,
जी
जिसको भी मैं दावत देती हूँ वो आगे से मुझे यही बात सुनाता है। कल भी मैं एक को वो दुकान पर मुझे मिली, तो मैंने कहा किस तरह ना, ये हमारे साई थी वो, कि इधर आए आप अपनी बेटियों को लेकर, तो कहती हैं आपको नहीं पता, मैंने तो आपको कहना था, मैंने देखती हूँ आप सुबह सुबह जाती हैं, तो हम तो मिलादुल कुरान जाते हैं उधर बच्चों को छोड़ते हैं, तो आप तो गुमराह कर रही हो अपने बच्चों को, अपने सारे घर को आपने गलत रास्ते पर डाल दिया है। मैंने कहा अच्छा मैं ना आपसे नहीं बात करती, मैं मेरे अल्लाह को पता है मैं किधर जा रही हूँ, आपसे मैं बहस नहीं करना चाहती। तो इस तरह उनको हम असल, मैं सोच रही थी कि हम सच्चा दीन, सच्ची किताब, सही असल बात बताने से भी डरते हैं, जिस तरह वो लोग बिल्कुल भी नहीं डरते ऐसी बातें करते।
उसमें लोरियां और दिलासे हैं ना,
जी बिल्कुल,
इसमें अमल है, इसमें जिहाद है, इसमें स्ट्रगल है, इसमें घर से निकलना पड़ता है, उसमें घर बैठ के बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो ये फिरकाबंदी जो है ना, इसने इंसानियत को रोक लगा दी है।
इन बंदे को बदल देना तो वो लोगों को कबूल नहीं है,
तब्दीली नहीं अच्छी लगती हमें,
तब्दीली नहीं अच्छी
लोग
लगती।
बदलने से तो डरते हैं। आप जब किसी को आके कहते हैं ना मैं तो बदल ही गई, बस वही उनका दिल बैठ जाता है, शुक्र है मैं नहीं गई। चले आगे थोड़ा पढ़ते हैं। अगर हम इकामत दीन की कोशिश करेंगे और इसे कायम करने में मसरूफ़ अमल हो जाएंगे तो हमें फिरका फिरका बनने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। इसको हाईलाइट करें, कोई पूछे ना कि आपका कौन सा फिरका है, कहना अभी वक़्त ही नहीं मिला के सोचे, काम में ही मसरूफ़ बहुत है। फिरका बंदी की फुर्सत सिर्फ इन लोगों को मिलती है जो दीन को कायम करने की जिद्दोजहद से महरूम और बेनसीब है। बात गौर से सुनिएगा, आज भी देखिए जो कुरान सुन्नत से जुड़ता है ना उसकी जिंदगी में स्ट्रगल आ जाती है, और जो फिरकों वाले हैं ना वो किसी बड़ी रात का इंतजार करेंगे नफिल पढ़ने के लिए, वो बड़े दिन का इंतजार करेंगे, वो किसी खास तारीख का इंतजार करेंगे खत्म दिलाने के लिए, वो किसी खास महीने का इंतजार करेंगे मिलाद के लिए। आम जिंदगी में वो लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए लोगों को अच्छे लगते हैं कि ये हर वक्त तो नहीं बुलाते। सच है कि नहीं? जिद्दोजहद वो ही करेगा जिसको सीरत समझ आ गई। अगर आज आप दीन और शरीयत को नाफिज करने की जिद्दोजहद में लग जाएं, तो कोई ब्रेलवी, देवबंदी और अहले हदीस नहीं होगा, सब मुसलमान ही मुसलमान होंगे। फिरका वारियत सिर्फ उस वक्त तक है जब तक अल्लाह के इस हुक्म की नाफरमानी करते रहेंगे। वा तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकु, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरके में ना पड़ो। सूरत आल इमरान की 103 आयत है। देखिए यहाँ चंद नाम है, मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगी इसलाह की खातिर और मोहब्बत के साथ। लफ्ज़ देवबंदी है, देवबंद एक शहर है, उसकी तरफ नस्बत चलती है। जब वो शहर ही इंडिया में है तो दीन तो नहीं होगा ना, समझ गए? क्योंकि वो एक ख़ास इलाके का नाम, जैसे लाहौरी, सियालकोटी, तो अब वो अमेरिका कनाडा में तो नहीं होंगे ना वो नाम। ब्रेलवी, ब्रेली नाम का शहर है, इंडिया में ही है गालिबन। इस दो नामों को हम पीछे करें, थोड़ी सी लफ्ज़ बात करूँगी अहले हदीस पे और अहले सुन्नत पे। आज के दौर में एक बहुत बड़ा फिरका कह लीजिए या वो खुद को अहले हदीस कहते हैं, जमात है। अब जब लोग अपने आप को अहले हदीस कहते हैं ना, और आप इसके साथ एक और नाम भी बहुत सुनते हैं, अहले सुन्नत, बज़ाहर देखें कि हदीस और सुन्नत किसकी है? नबी की है ना। हदीस आपकी बात तो सुन्नत आपका तरीका, ठीक है ना, नामों में कोई हर्ज नहीं है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि अहले हदीस पाकिस्तानी फिरका है, क्योंकि पाकिस्तान में हदीस नहीं है, तो हदीस जहां भी आएगी अरब होगा और साथ ही फिर सुन्नत भी। अरब से ही है, पहली बात समझे आप। यानी इस इन दो नामों का ताल्लुक किसी जगह से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस सुन लें या अहले सुन्नत सुन लें, ज़हन में अरब ही आते हैं और नबी सल्लम ही आते हैं। अच्छा, अब इन दोनों के अकायद अलग अलग हैं। जितना मैंने अहले हदीस मसलक को जाना, करीब से भी जाना दूर से जाना, इनका मौक़िफ़ क्या है, ये कहते हैं कि कौल के मुकाबले में हदीस को तरजीह दो। यानी इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्ला का भी कौल है, इमाम मालिक का भी, इमाम शाफ़ी का भी, इमाम अहमद बिन हम्बल का है। अब एक बात में चारों के कौल है, कोई भी एक इशू हो सकता है ना, बहुत सारे हैं फिक में अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इन चारों में से किसका ले लो जिसकी बात सही हदीस से ज़्यादा करीब है। तो ये बिल्कुल ठीक सोच है। यानी अहल हदीस जो खुद को कहलाते हैं, उनकी सोच कुरान सुन्नत ही है। आप कह लें कि गलबा या डोमिनेंसी कुरान सुन्नत की है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैं अहले सुन्नत को इतना नहीं जानती, मैं आपको साहब जो फी जमाना अहले सुन्नत है, लेकिन मैंने उनके अमल में सुन्नतों का रंग कम देखा है, इल्ला ये कि चंद वक्ती सुन्नत है, मैं उस पर बात नहीं करूंगी जिस पर मेरा इतना इल्म नहीं। मैं क्यों ऐसी बड़ी बड़ी बातें करूं? लफ्ज अहले हदीस पे बात करना मेरे लिए जरूरी था क्योंकि मैं क्लोज सर्कट बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। हकीकत में वो कुरान सुन्नत को ही मानते हैं, लेकिन फर्क और सोच क्या है। लफ्ज अहल हदीस जब यूज करेंगे, मैं आपको कहूंगा मैं अहले हदीस हूं, आम बंदा क्या सोचेगा कि अच्छा ये भी एक फिरके को ही मान रही है ना, तो मैं अपने आप को अहले सुन्नत कह लेती हूँ। बात वाज़े, तो नाम नहीं रखना अपना, बन जाए आप अहले हदीस। कुरान सुन्नत माने आप अहले हदीस भी हो गए, पहले सुन्नत भी हो गए। यानी मैं खुद का अहले सुन्नत कह सकती हूँ, कब, जब मेरे जिंदगी में सुन्नत का अमल है। लेकिन नाम ना अपने कहलवाएं। आज हम ऐसे साहिबे दर्द लोग जो बड़े पाक से वाकई हदीस को मानते हैं, उनको यही कह सकते हैं कि आज के दौर में फिरका वारिय से पलटते हुए आप भी अहले हदीस लफ्ज छोड़ दें। आप खुद को कहें कि आप मुसलमान हैं, बात समझ गए। यानी एक शायद बात वादे कर सकूं कि आप रहे अहले हदीस, आपका मसलक ठीक है, लेकिन आप खुद को अहले हदीस ना कहलवाएं, खुद को मुसलमान कहलाएं। बात समझ आ गई, ये तो ठीक है नहीं है, लेकिन याद रखें कि सब मुसलमान ही मुसलमान हो, क्योंकि जब तक आप अपना नाम नहीं छोड़ेंगे दूसरे भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे दूसरों ने गलत बुनियादों पे नामों की निस्बत रखी है ना, आपकी सही बुनियाद है फिर भी छोड़ दें। बात वाज़े, और ख़ास तौर पे जब कुछ शख्सियात से लगाते हैं कि उस शख्सियत से ये फ़िरका या ये जमात शुरू हुई, तो दूसरों को भी हक देते हैं हम कि वो भी अपने बारे में बोलें। तो कुरान सुन्नत को मानिए, किसी का कौल, किसी आइमाए कराम का फेल अमल देखे, लेकिन सही हदीस जिसको वेरीफाई करती है उसको ले ले। किसी मामले में इमाम अबू हनीफा का अमल बिल्कुल सही सुन्नत के मुताबिक आज के दौर में, आप उस वक्त हनफी बन जाए। जिस मसलक में आपको इमाम मालिक का मसलक हदीस से करीब लगता है, आप उसको ले ले। ना तो आपको कहलवाने की जरूरत किसी एक के साथ है, ना किसी दूसरे के साथ है। बहरहाल, फिरका वारियत सिर्फ उस वक्त तक है जब तक अल्लाह के इस हुक्म की नाफरमानी करते रहेंगे। सच है कि नहीं? कुरान को छोड़कर जब दूसरों पे चलेंगे तो फिरके तो बनेंगे। ये है इकामत दीन की असल जिद्दोजहद। फरमाया कुल या अहले किताबी लस्तुम अला शैइन, कह दीजिए अहले किताब कुछ भी नहीं हो तुम, तुम्हारी तो कोई हसीयत ही नहीं, कोई औकात नहीं है, कोई हकीकत नहीं। यानी अल्लाह की नजरों में तुम्हारा कोई मुकाम ही नहीं है। कब तक, जरा नोट कीजिएगा, हत्ता तुकीमुत तौरात, जब तक के तुम तौरात को नाफिज ना करो। ये किस दौर की बात है? जब तौरात का दौर था, हजरत मूसा का दौर। यानी अपने दौर में अगर मूसा के फॉलोअर्स ने तौरात को एप्लीकेबल नहीं समझा तो उनकी अल्लाह की नजर में कोई औकात नहीं है। चलिए, ये दौर गुजर गया अब अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट, वल इंजील, और इंजील ये किनको कहा जा रहा है? हजरत ईसा के फॉलोअर्स को। जब इंजील का दौर था, अगर उसको मानते तो इंजील को नाफिज करते तो ठीक था। अब ये दोनों खत्म, आज तो इन दोनों का वजूद नहीं है ना, तो फिर क्या? वमा उन जिला इलाई को मे रबी को, ये कौन है? कुरान पाक और सुन्नत, वहां किताबों के नाम है तो रात और इंजील। या ये नहीं कहा कि हत्ता तो की मुल कुरान, वजह कुरान अकेला नहीं है, कुरान और सुन्नत। तो माउन जिला इलैकुम में कुरान के साथ साथ हदीस, तो आज मुसलमानों की कोई औकात अल्लाह की नज़र में नहीं है जब तक वो कुरान और सुन्नत को नाफिस नहीं करते। ये सूरह माईदा की आयत 68 है, आप इसकी तफसीर तो सुने, बल्कि जिसको इस मौजू को जो हम पढ़ रहे हैं आजकल डिटेल से सुनना है, वो एक बार फिर सूरह माईदा की तफसीर सुन ले सवीलुल जन्ना में से, जितनी कम्पैक्ट और जितनी एनरिच सूरत है। जब मैंने पढ़ाया था मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने कोई कंसंट्रेटेड चीज़ पढ़ा दी है, इतनी ज़्यादा हैवी सूरत है ये, और अल्लाह के नबी के इस दौर की आखिरी सूरतों में से सूरत है, जब शरीयत पूरी हो चुकी थी, जब इस्लाम वाकई खूबसूरत रंग में आ चुका था। अगर तुम ईसाई और यहूदियों के बहुत बड़े आलिम या पादरी हो, मौलवी हो, तुम्हारी कोई कदर व कीमत नहीं है जब तक तुम इंजील, तौरात और इनके सबसे आखिरी एडिशन कुरान मजीद को अपनी आवाम पर नाफिस ना कर दो। तौरात और इंजील का ज़माना गुजर गया, अब जो इस वक्त इन किताबों का लेटेस्ट एडिशन है वो कुरान मजीद है। अब तुम्हारी कदर व कीमत सिर्फ उस वक्त होगी जब तुम तौरात और इंजील की असल शक्ल कुरान मजीद को नाफिस करोगे। यह अहले किताब के साथ साथ हम मुसलमानों से भी कहा जा रहा है, अगर हम किसी पहाड़ की गार में चिल्ला कशी करने बैठ जाएंगे तो कुरान नाफिस नहीं होगा। नोट करें इसको भी। कुछ लोगों ने आज ये एस्केपिज्म ढूंढा, अपनी इसलाह की फिक्र करो, चिल्ले काटो, वजीफे करो, पहले अपने नफ्स को मारो और अल्लाह का कुर्ब पाओ और तसव्वुफ में डूबते जाओ। तो फिर तो और क्या लोगों को चाहिए, बल्कि अच्छा है आप कमरे में बंद हो जाएं, दूसरों को जो सताते थे वो भी नहीं सताएंगे, जो टोकते थे वो भी नहीं टोकेंगे। देखिए एक जुमला लिखिए, मैं बड़े शऊर से बोलूंगी, अल्लाह के नबी की सुन्नत चिल्ला कशी नहीं थी, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के दर्जे का कोई अमल नहीं है। चाहे आप 125,000 बार कलमा पढ़ लें घर बैठ के, आप सुबह घर से निकलते हैं, आंखें मलते हुए उठते हैं, आप आते हैं कि लोगों को अल्लाह का दीन सिखाऊं, खिदमत करूं, जगह साफ करूं, दरवाज़ा खोलूं, रोल कॉल लूं, इस अमल से कोई अमल ऊपर नहीं है। आप घर के मैं 2 घंटे में 100 दफ़ा मैं सूरह यासीन पढ़ लूंगी, अल्लाह को उसकी परवाह नहीं, क्योंकि उस तरीके से दीन नाफिस नहीं होगा। वो आप एक सवाब का पहाड़ बनते जाएंगे दिन ब दिन, लेकिन आपके इर्द गिर्द वाले जब दीन से दूर हैं तो आप कहाँ तक अमली तौर पे बचेंगे। फरमाया ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है। इस्लाम की रहबानियत ये है कि तुम नमाज के वक्त से ज़रा पहले मस्जिद आ जाया करो। हाईलाइट करें, बड़ी खूबसूरत बात है। इस्लाम की रहबानियत स्टेप बाय स्टेप है, कुल्ली तौर पर नहीं कहा सब छोड़ दो, हाँ नमाज से पहले सब छोड़ दो, तुम राहिब बन जाओगे, और नमाज के इंतज़ार में बैठे रहो, थोड़ा सा उसके बाद इंतज़ार करो, इससे ज़्यादा किसी रहबानियत की गुंजाइश नहीं। फिर इसी तरह इस्लाम की रहबानियत यह है कि हज पर आ जाओ, इससे ज़्यादा रहबानियत की ज़रूरत नहीं है, यदि साल में एक बार ज़रा सब छोड़ छाड़ के चले जाओ। वो ज़माना ख़त्म हो चुका जब लोग अल्लाह से मिलने के लिए जंगलों, पहाड़ों की खोहों, गारों और सहराओं में चिल्ला कशी किया करते थे। अब अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बाजार के कारोबार, इनको भी हाईलाइट करें, नंबरिंग भी कर लें बेशक, वालदैन की मुस्कराहटों, बीवी बच्चों के हकूक की अदायगी के आलम में से ही होकर गुजरता। बात समझ गए, इस्लाम प्रैक्टिकल रिलीजन है, हमें इंसान दोस्त बनाता है, इंसान दुश्मन नहीं बनाता कि आप काम छोड़ दें, नखट्टू बन के घर में बैठे या चंदे जमा करते रहे, पहले ज़कात के पैसों पे पढ़ें और फिर ज़कात के पैसों पे ज़िंदगी गुजार दें। बाज़ दफ़ा दीन के नाम पे ये भी सिखाया जाता है, काम नहीं करने, बस तुम आराम करो और लोग तुम्हारे खाने का इंतज़ाम करते रहेंगे, ये भी इस्लाम नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए रिस्क हलाल कमाने का अहतमाम भी करते थे। फिर इसी तरह वालदैन, बीवी, बच्चे, इनके हकूक़ पूरे करते हुए आप अल्लाह तक पहुँचें। आपको अपने बच्चे की मुस्कुराहट में अल्लाह दिखेगा, आपको अपने शौहर के प्यार में अल्लाह दिखेगा, आपको अपने माँ बाप की दुआओं में अल्लाह दिखेगा। अब तन्हाई में बैठने से कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें दुकानदारी के वक्त भी अल्लाह को याद करते हुए, दफ्तरों में फाइल वर्क करते हुए, तमाम मामलात को दुरुस्त तरीके से पूरे करते हुए जिंदगी गुजारनी होगी। वहाँ जाके अल्लाह के हुक्मों को देखो, वहाँ रिश्वत ना लेना अल्लाह को याद करना है, वहाँ हराम से खुद को बचाना अल्लाह को याद करना है, और दुकान बंद कर देनी जुम्मे से पहले, ये है अल्लाह को याद करना, ये भी रहमानियत है कि जुमे की नमाज के वक्त जॉब छोड़ दो, कारोबार बंद कर दो। अब ये सूरत मायदा की आयतों को जरा तकाबुल में देखिएगा। आयत 47 फरमाया, वमल्लम यहकुम बिमान जलल्लाहु फौलाएकहुमुल फासिकून, और जो लोग अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते यही लोग फासिक है। फासिक किसको कहते हैं? हदों से गुजरने वाले। फिर फरमाया, वमल्लम यहकुम बिमान जलल्लाहु फौलाएकहुमुल काफिरून, जो लोग अल्लाह के उतारे हुए अहकाम के मुताबिक फैसले नहीं करते वही लोग काफिर हैं। ये भी वही आयत है। और आप यहाँ तो सिर्फ आयत का टुकड़ा पढ़ रहे हैं ना, आप पूरी आयत जाके घर में देखिएगा। एक जगह तौरात, दूसरी जगह इंजील और तीसरी जगह कुरान का जिक्र है। यानी अपने दौर में कुरान को नाफिज ना करना उस दौर का कुफर है, जैसे अपने अपने दौर में तौरात और इंजील थी। कुफर इस बात का नाम है कि अल्लाह की किताब, अल्लाह का दिया हुआ आइन मौजूद है और तुम कहीं और से आर्टिकल निकाल निकाल कर फैसले कर रहे हो। तुम्हें 1935 यानी 1935 की ताज़ीराते हिंद से अभी तक फुर्सत नहीं मिली। यानी कितने 60 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, अभी तक ब्रिटिश लॉ। जो कौम 60 साल में अपना कानून नहीं बना सकी, अमल कब कराएगी? तुम्हें 1935 की ताज़ीराते हिंद से अभी तक फुर्सत नहीं मिली, जबकि अल्लाह का कानून, आइन और नबी सल्लम की शरीयत तुम्हारे पास मौजूद है। इसके मुकाबले में गुलामी के कवानीन अभी तक चल रहे हैं। वमल्लम यहकुम बिमान जलल्लाहु फौलाएकहुमुल फासिकून, और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदे अहकाम शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते तो मालूम हुआ कि यही लोग नाफरमान हैं, यही जालिम हैं। तो एंड पे खुलासा क्या हुआ? मालूम हुआ कि इबादत का रास्ता इस तरह से आता है। अब ये पूरे जितने हिस्से को हमने पढ़ा ना, उसका खुलासा है। कैसे आता है? नंबर एक, हम अल्लाह की तौहीद सीखें। यही काम आपने अपने बच्चों पे करना है, यही अपनी जाहिल सोसाइटी पे करना है, यही मुलाजमों को सिखाना है। फिर और इबादत का एक तरबियती कोर्स करें, पहले अल्लाह की तौहीद सीखें फिर इबादत का तरबियती कोर्स करें। अल्लाह की मोहब्बत, इखलास, जिक्र और इल्म के जरिए हासिल की जाए। अल्लाह की मोहब्बत के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इनका इत्तबा सीखा जाए। और जब इत्तबा कामिल हो जाए, पूरी हो जाए और हम नबी सल्लम की ज़िंदगी को अपना मिशन बना लें, तो फिर जिहाद और तबलीग की ज़िंदगी शुरू हो जाए। और जिहाद का मकसद सिवाय इसके और कुछ नहीं कि अल्लाह के कलमे, अल्लाह की शरीयत और निज़ाम को हम नाफिज कर दें। ये है आइडियल सोसाइटी और ये है मनहज आपका, हमारा ये मेथडोलॉजी है, ये तौर तरीका है। इधर तक काम आप कर लें, देखिए दुनिया जन्नत बन जाएगी। लेकिन चूंकि इस वक्त हो नहीं रहा, तो करने वालों के रास्ते के अंदर रुकावटें बहुत सारी हैं। अब आप बताइए आपने क्या सीखा है? कोई सवाल या कोई बात?
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम।
शादी, अगर मैं सही बताऊं तो जब से किताब शुरू हुई है तो जितना मैं सुन सकती हूँ तो उससे तो एक तो अपना मुहासबा करने का मौका मिल रहा है, और बहुत ज्यादा दिल में जिसको कहते हैं ना कि घबराहट होती है, मायूसी आती है कि जिंदगी कहाँ जाया करती है। और अगर अपने ईमान और इबादत और इखलास पे फोकस करूँ तो लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं हासिल किया, लेकिन फिर भी उम्मीद के साथ, फिर नई हिम्मत के साथ शुरू अपने दिल को खड़ा करती हूँ कि नहीं, इंशाल्लाह यही रास्ता है, इसी से इंशाल्लाह तब्दीली आनी है और मैंने अपना हिस्सा डालना है। और अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले पहले ही फोकस थे, अब और मजीद फोकस कर रही हूँ उनके ऊपर, और बस अल्लाह से यही दुआ है कि जो कर सकती हूँ उसको मैं अच्छा करूँ और बेहतर वाला मामला करूँ, और मेरा कोई टूटा फूटा अमल ऐसा दीन के या अल्लाह सुब्हान तआला के कबूलियत के मुताबिक हो जाए, लेकिन फिर भी वो अमल में कोई नजर नहीं आता, लेकिन दुआ यही होती है कि अल्लाह जी आप कबूल कर लें और यहाँ पे कुछ कर सको।
आमीन।
जी